ग्रोसरी प्राइसेस जो हैं वो जो है 3.5% पे जनवरी में थी, हालांकि वो कहते हैं जी दिसंबर में तो बड़ी हाई थी 4.7% पे थी, लेकिन फिर भी जो लोग ग्रोसरी रोजाना के बेसिस पे या के हफ्ते के बेसिस पे लेते हैं उनको पता है कि बहुत ज्यादा उछाल आया ग्रोसरी की प्राइसेस में, जहां पे आपकी $120 की हो जाती थी अब वो 220 में भी आपकी चीजें नहीं आती हैं। तो बहरहाल जी ये स्टैट्स कनाडा की जो है वो अजीब बात है, जिसमें कि वो कहते हैं जी कि जो प्राइसेज हैं वो नीचे आई हैं, ग्रोसरी की प्राइसेज में कोई नीचे नहीं आई है, लेकिन इसमें स्टैट्स कनाडा बड़ा खुश है, वो कह रहा है जी कि अब जो नेक्स्ट शायद जो बैंक ऑफ कनाडा अपने ओवरनाइट लैंडिंग रेट्स बोलेगा, क्योंकि वो बोल भी रहा था कि अगर ये नीचे आएगा इन्फ्लेशन रेट तो हम जो है बढ़ाएंगे नहीं प्राइसेज, तो हो सकता है कि अब जो नए उनके रेट्स आए वो उसको ना बढ़ाएं। इस वक्त जो आपको पता ही है कि बैंक ऑफ कनाडा का इंटरेस्ट रेट 5% पे स्टैंड करता है, तो शायद वो कहते हैं जी कि ये कट कर सकते हैं, अब कितना कट करेंगे वो तो अब देखने में आएगा, हो सकता है उस वक्त फिर ऑयल की प्राइस ऊपर चली जाए और चीजें एक्सपेंसिव हो जाएं, फिर ये प्राइस जो है ये फिर बढ़ा देंगे,
अप एंड डाउन अप एंड डाउन, इफ द प्राइस ऑफ द ऑयल गोज अप हमारा इन्फ्लेशन ऑलरेडी इज गोइंग टू गो अप अगेन।
बिल्कुल बिल्कुल।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
जी
जी, कनाडा की जो मेंटल हेल्थ एंड एडिक्शन मिनिस्टर हैं यारा सैक्स, उन्होंने कहा जी कि लोगों को चूंकि बहुत ज्यादा फियर और स्टिग्मा होता है तो वो जो है इन चीजों के बारे में, ये जो ओवरडोज जो हो जाती है लोगों के और ये जो क्राइसिस बड़ा बन जाता है उसके बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसको बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि हमने कहा जी कि प्रिस्क्राइबिंग फार्मास्यूटिकल्स जो है वो इन ड्रग यूजर्स की हेल्प कर सकते हैं, तो इसमें कोई हार्म नहीं है, हमने एक हार्म रिडक्शन स्ट्रेटजी बनानी है जिसमें कि हमने उनको सेफर सप्लाई प्रोग्राम जो है उसके अंडर चीजें देनी है और सुपरवाइज्ड कंजम्पशन साइट्स में हमने रखनी है, ताकि अगर किसी की हालत खराब हो जाती है तो उसको देखा जा सके। आपको पता ही है कि कनाडा के अंदर जो ओवरडोज डेथ्स हैं वो बेतहाशा हैं, पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने कहा था कि जो ड्रग ओवरडोज की जो से जो डेथ्स होती हैं दैट इज एवरेज ऑन एवरेज पर डे इज 23, जो कि लास्ट ईयर की फिगर्स थी। वो कहते हैं जी तकरीबन 40,000 लोग जो है वो ओपीओइड रिलेटेड जो डेथ्स हैं उनके अंदर इन्वॉल्व हैं सिंस 2016, और उसी वक्त से जो है इन्होंने एजेंसी ने यानी कि पब्लिक हेल्थ एजेंसी जो थी उन्होंने अपना डाटा कलेक्ट करना शुरू किया था। अब ये जो डाटा इनके पास है बिटवीन जनवरी टू जून 2023, इसके अंदर वो कहते हैं जी बहुत सारा फेंटेनॉल यूज किया गया था, और जो लास्ट टू मंथ्स हैं उसमें पुलिस और पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स का कहना है कि सस्कैचुअन थंडर बे और बेलोविल का जो एरिया है वहां पे ना सिर्फ ओपियोइड बल्कि फेंटेनॉल जिसके के अंदर एनिमल ट्रैंकुलाइजर जाइलाजीन जो है वो भी मिक्स किया गया है, जो कि इंतहाई खतरनाक है। मोस्टली डीलर्स जो हैं ये फेंटेनॉल को दूसरे सब्सटेंसेस के साथ मिक्स करते हैं ताकि चीपर प्रोडक्ट्स बना सकें, क्योंकि प्योर ओपियोइड जो है वो बड़ी महंगी होती है और उसमें उनको इतना जो है मार्जिन नहीं बचता है। तो ये क्राइसिस जो है वो कहते हैं जी ज्यादा बढ़ गया था पेंडेमिक में, क्योंकि उस वक्त लोगों के पास जॉब्स नहीं थे तो वो ड्रग्स की तरफ ज्यादा चले गए थे, और फिर जो बॉर्डर्स क्लोजर्स हो गए थे उसमें लोगों को ड्रग्स मिले नहीं थे, तो फिर उससे जो है लोगों ने फिर और दूसरे तरीके अपनाने शुरू किए। तो मिनिस्टर साहबा का कहना है कि जो गवर्नमेंट इस वक्त डिसीजंस ले रही है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो है वो सिर्फ स्टिग्मा जो है वो ड्राइव कर रहा है गवर्नमेंट के डिसीजंस को क्रिटिसिज्म, तो वो ये जो है आप इस तरह से ना करें। अब ये देखें जरा कि कितना ये यहां पे शोर मचता है इस मुल्क में कि जी कार थेफ्ट हो रही है, कार थेफ्ट हो रही है, पुलिस वाले जो है दिन रात लगा के ये चोरों को पकड़ते हैं और अदालतों में जाके ये छूट जाते हैं। अब ये आज भी एग्जैक्टली ऐसे हुआ है कि कार थेफ्ट जो बहुत अरसे से मॉन्ट्रियल के अंदर हो रही थी उसमें जो कुछ लोग जो थे इन्वॉल्व थे कि लग्जरी गाड़ियां जो है उसका एक पूरा रिंग था ये थेफ्ट का जो चोरी करते थे, उन तीन लोगों को आज जाने दिया है, लास्ट मंथ उनको जाने दिया था, लेकिन ये डिटेल्स जो है आज सामने सारी आई हैं। कोर्ट ऑफ क्यूबेक जो है उनके जस्टिस सल्वातोरे मेसिया जो हैं उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है कि मैं ये जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके ऊपर स्टे लगाऊं अगेंस्ट उबेदा बोरगोल, जेम्स रिस्क और अली ट्रैड जो कि इन्वॉल्व थे इस कार थेफ्ट रिंग के अंदर। इनकी ट्रायल जो है अब शुरू होगी फिर से May 6 को। ये चार्ज किए गए थे 2021 में आफ्टर लॉन्ग 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 इन्वेस्टिगेशन बाय डिफरेंट मॉन्ट्रियल पुलिस ऑफिशियल्स, उन्होंने इन लोगों को पकड़ा था जिससे वे उनका ख्याल था कि दिस विल लीड टू द होल गैंग, हम उनको पकड़ सकेंगे, लेकिन आज जज साहब ने कहा जी कि ये जो क्राउन प्रोसिक्यूशन है उसने इतना लंबा कर दिया इस सारे केस को कि ये बिल्कुल अनरीजनेबल है और ये वायलेट करता है चार्टर ऑफ राइट जो है टू स्पीडी ट्रायल ऑफ दीज सस्पेक्ट्स एंड यू नो तो उस पे उन्होंने कहा जी कि ये मुझे बड़ा अफसोस है, रिग्रेटेबल है मेरा डिसीजन कि मैं इनको जाने दे रहा हूं, लेकिन मॉन्ट्रियल पुलिस ने जो इतनी ज्यादा मेहनत की है वो भी सारी जो इन्वेस्टिगेशन भी की है वो सारी वेस्ट जाएगी, लेकिन मेरे पास जो है और कोई भी तरीका नहीं है। इन लड़कों का तरीकाकार ये होता था कि ये हाई एंड गाड़ियां जो थी उनको रेंट करते थे, फिर इसके अंदर जीपीएस लगाते थे, फिर दे देते थे, फिर एक बंदा और कस्टमर बन के आता था और ये अपनी कीज भी बनवा लेते थे और फिर जाहिर है कि लोकेशन तो इनकी ट्रैक हो जाती थी और फिर ये इसको चोरी करके और ले जाते थे और बेच देते थे। ये ज्यादातर टारगेट करते थे जीप ग्रैंड चेरोकी, डॉज ड्रैंगोज, टोयोटा रैव फोर्स और हुंडई टक्संस। तो ये जनाब इधर जो है हालत है सारा कुछ। लॉबलॉस जो है जी उसने कहा जी कि हम 40 न्यू स्टोर्स जो हैं वो खोल रहे हैं क्योंकि हम $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। और लॉबलॉस कंपनी लिमिटेड जो है उसने, जो कि आपको पता ही है कि शॉपर्स ड्रग मार्ट भी ऑपरेट करते हैं, वो कहते हैं जी कि हम इनको एक्सपैंड अप कर रहे हैं और रीलोकेट कर रहे हैं 10 इनकी जो लोकेशंस हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हम रेनोवेट कर रहे हैं 700 अदर आउटलेट्स जो हैं और इसकी वजह से 7500 जॉब्स क्रिएट करेंगे। ये जो लॉबलॉस कंपनी लिमिटेड है वो कहते हैं जी कि इनका जो नेटवर्क है 2500 स्टोर्स का है कनाडा के अंदर और इसके अंदर जो है ये पार्ट ऑफ लॉबलॉस जो है उसके अंदर, जैसे मैंने आपको भी बताया कि शॉपर्स ड्रग मार्ट भी है, इसके अलावा ये ओन करते हैं नो फ्रिल्स और रियल कैनेडियन सुपर स्टोर एंड TNT। तो काफी ये बड़ा जो है ग्रुप है। एनबीसी जो है, एनबीसी न्यूज के मुताबिक आज व्हाइट हाउस जो है उसने आज एक प्रेस रिलीज जारी की है और उसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है लॉन्ग रेंज टैक्टिकल मिसाइल्स जो है वो दे सकता है यूक्रेन को अगर कांग्रेस न्यू फंडिंग पैकेज जो है वो अप्रूव कर देगी। एनबीसी ने कहा है कि कुछ अननेम्ड ऑफिशियल्स ने हमारे से बात की है और उन्होंने कहा जी कि ये जो वेरियंट ऑफ मिसल है ACSEMS, ये जो आर्मी टेक्टिकल मिसल सिस्टम है, अगर $60 बिलियन का एड पैकेज जो है ये अप्रूव सेनेट कर देती है तो फिर ये ACSEMS जो है हम यूक्रेन को दे सकते हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की साहब ने भी थोड़े दिन पहले कहा था कि रशिया जो है वो ये जो डिलेज आते जा रहे हैं इनको एड आने में उसका फायदा उठा सकता है। यूएस ने कहा जी कि हम ये इनको जो अप्रूव किए थे मिसल्स जो अक्टूबर में देने के लिए और हमने कीव को कहा था कि ये आपने जो रशिया है उसके ऊपर स्ट्राइक के लिए नहीं यूज करने, तो पायम दिखाने के लिए खाली आप उनको दे रहे हो, लेकिन अब वो कह रहे हैं जी कि ये जो नए हैं जो ACSEMS जो ये मिसल्स हैं इनकी रेंज 300 किलोमीटर है और ये क्लस्टर बॉम्ब्स भी कैरी करते हैं, ये उनको दिए जा सकते हैं ताकि अपने डिफेंस में यूज कर सकते हैं और यूक्रेन जो है वो इनको स्ट्राइक कर सकता है क्रीमियन पेनिनसुला के अंदर भी ताकि जो है अपनी जमीन वापस ले सके रशिया से। तो पायन ये सारे मामला जो है अब किस तरफ लीड करेंगे, जाहिर है कि ज्यादा लड़ाई होगी। अब जूलियन असांज साहब 52 ईयर्स उनकी एज है जनाब और काफी अरसे से आपको पता है हाउस अरेस्ट में हैं, एम्बेसीज में रहे हैं और उनको बाहर आने जाने की इजाजत नहीं है जब से कि इन्होंने विकी लीक्स आपको पता ही है कि अपनी निकाली थी और उसके अंदर सारी ये जो डिटेल्स थी यूएस गवर्नमेंट की जो होती हैं जो इनके अलेजली गलत काम होते हैं उसके बारे में से किया था। इसकी अब लीगल टीम जो है ये लंदन के हाईकोर्ट में जा रही है अब फाइनली बात करने के लिए, क्योंकि ये बात अब इंग्लैंड में सामने आ रही है कि इसको एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाएगा यूएस में और जहां पे ये फेस करते हैं लाइफ इन प्रिजन, लेकिन उनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद उनको अगर ये वहां जाएंगे तो उनको मारा भी जा सकता है। इनके ऊपर यूएस ने एस्पायनाज के चार्जेस लगाए थे। विकीलीक के फाउंडर जो हैं ये 2 साल से यूके की हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उसके सामने ये सारा इनका केस चल रहा है और अगर ये ना हो गया और अगर ये पूरा हो गया और इन्होंने जजेस ने दे दी इजाजत तो फिर इनको जो है अमेरिका में फ्लाई किया जा सकता है। ये 2-डे हियरिंग है और ये जो जूलियन असांज हैं जो ऑस्ट्रिया के नेटिव हैं ये अब कह रहे हैं कि जी मुझे एक्स्ट्रा डाइट ना किया जाए। ये जो डिसीजन था ये बनाया था फॉर्मर यूके की होम सेक्रेटरी प्रीति पाटिल ने और उन्होंने कहा था जी कि ये इनको इनके जो केस है उसके ऊपर आप नजर डालें, तो उसके सिलसिले में जो है हाई कोर्ट इंग्लैंड की वो इस सिलसिले में देख रही है। लेकिन जो इनकी लीगल टीम है वो कह रही है कि अंडर यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उनको इसमें इंटरवीन करना चाहिए क्योंकि इनके ह्यूमन राइट्स जो हैं वो वायलेट हो सकते हैं और अंडर रूल 39 ऑर्डर। तो आप भी इसके ऊपर देखें। यूएस जो है वो कहता है कि इसके ऊपर 18 क्रिमिनल चार्जेस हैं क्योंकि इसने डी क्लासीफाई किए थे बहुत सारे मटेरियल इन 2010 और 2011 जो कि हमारे लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट थे। इस वक्त जूलियन असांज साहब जो है वो जो इंग्लैंड की बेलमार्श हाई सिक्योरिटी प्रिजन है उसके अंदर रह रहे हैं। ये जो 18 केसेस इनके ऊपर इंग्लैंड जो यूएस ने बनाए हैं उसमें हर केस में इनको 10 साल की सजा हो सकती है, विच मीन्स के अराउंड 175 ईयर्स जो है ये प्रिजन में गुजार सकते हैं। तो उसके लिए जो है इन्होंने कहा जी कि मुझे इधर ही रहने दिया जाए, तो अब देखेंगे जनाब क्या होगा। आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके ऊपर ओरल प्रोसीडिंग्स जो हैं कि ये जो ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन स्टेट्स हैं इनसे कैसे छुटकारा इसराइल से पाया जाए उसके ऊपर जो है आज शुरू हुई है बातचीत फिर से। इसके अंदर साउथ अफ्रीका, अल्जीरिया, सऊदी अरेबिया, नेदरलैंड्स, बांग्लादेश और बेल्जियम जो हैं उन्होंने अपने अर्ली आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। तकरीबन 50 स्टेट्स और 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने आज जजेस को एड्रेस किया एट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ये इनकी जो आर्ग्यूमेंट है ये फरवरी 26 तक जारी रहेगी। यस्टरडे हमने आपको बताया था कि पैलेस्टीनियन रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने तो कहा था ऑल टुगेदर जो है ये इसराइल को यहां से निकाला जाए क्योंकि उसका पूरे का पूरा ऑक्यूपेशन वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम और गाजा के अंदर जो है इलीगल है और इसको अनकंडीशनली कहा जाए कि फौरन ये अपने ऑक्यूपाइड जो प्लेसेस हैं उनको छोड़ के जाए। मरिया क्लारा पॉला डी टस्को जो है हेड ऑफ यूनाइटेड नेशंस डिवीजन एट ब्राजीलियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स उन्होंने भी कहा कि जी ब्राजील तो बड़े अरसे से कह रहा है कि ये जो टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए और जितना प्रोलॉन्ग करेंगे आप ऑक्यूपेशन को और सेटलमेंट को और ये अनेक्स करते जाएंगे पैलेस्टीनियन टेरिटरीज को तो ये वायलेशन होगा इंटरनेशनल लॉ का। इसके अलावा बोलिविया के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि ये जो पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस ऑफ इजरायली ऑक्यूपेशन है पैलेस्टीनियन टेरिटरी में ये बिल्कुल इलीगल है और इसके बड़े खतरनाक किस्म के कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। उन्होंने कहा जी कि ये अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ये सारा जो है वायलेशंस ऑफ राइट्स है ऑफ पैलेस्टीनियंस। असद शोमन जो कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बलीज हैं उन्होंने भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कहा कि पैलेस्टाइन मस्ट बी फ्री, तो इसलिए ये ऑक्यूपेशन जो है खत्म होना जरूरी है। तो अब बाकी के लोग भी जो बोलेंगे देखेंगे अब इस पे जनाब क्या होता है। यूएस के जो एनवॉय हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में आज जो थर्ड वीटो हुआ था कि जी सीज फायर होना चाहिए पैलेस्टाइन के अंदर उसको सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर किया है, वीटो किया है और ये जो रेजोल्यूशन थी ये अल्जीरिया लेकर आई थी फॉर सीज फायर जिसको कि इन्होंने फिर से एक दफा किल कर दिया। इन्होंने कहा जी कि अगर हमने ये जो है बात की तो उसमें ये जो ट्रूस की बातें हम कर रहे हैं हमास और इसराइल के बीच में ये सारी खराब हो जाएंगी। डजन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज जो है वो भी अब चाहती हैं कि इमीडिएटली ये गाजा में वॉर जो है ये रुके और ये जो रफा के अंदर एंटर होने वाला है इसराइल इसको भी रोकने की जरूरत है। यूएस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि जी ये जो आप मेजर ले रहे हैं और जो अल्जीरिया ने प्रपोज किया है ये बिल्कुल गलत है। लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड जो है यूएस एम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस उन्होंने कहा जी कि अल्जीरिया की रेजोल्यूशन जो है ये सेंसिटिव टॉक्स को रीजन के अंदर जो चल रही है उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी और ये प्रोसीडिंग्स जो हैं ये विशफुल और इररिस्पॉन्सिबल हैं और हम इसको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो पाईजान आपको हम बता दें कि 29,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस की डेथ हो चुकी है अभी तक जो इसराइल ने इनके ऊपर वॉर की हुई है और उसमें 69,000 से ऊपर लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं इसराइली अटैक्स में, लेकिन फिर भी आज तीसरा वीटो जो है वो किया है यूएस ने। कतर जो है जी वो आज बड़ा नाराज नजर आया इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के जो बहुत ही गलत किस्म के इररिस्पॉन्सिबल कमेंट्स थे उसके ऊपर उन्होंने जो है बड़ा रिएक्शन शो किया है और नेतन्याहू साहब ने कहा था कि कतर जो है फॉरन हॉस्टेजेस रिलीज करवाए हमास से क्योंकि उनका जो है बड़ा जोर है हमास को और हमास को ये लोग इसलिए ये जोर दे सकते हैं क्योंकि ये इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं और ये बड़ा रोल अपना प्ले कर सकते हैं और जो कि और कोई भी अरब वर्ल्ड में नहीं कर सकता है। ये स्पीच कर रहे थे नेतन्याहू साहब अमेरिकन ज्यूश लीडर से जिस वक्त उन्होंने ये सारे बातें की। इसके ऊपर कतारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है माजिद अल अंसारी उन्होंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर रिएक्शन शो करते हुए कहा कि हम इसको कैटेगोरिकली ये सारे एक्यूजेशन इनको हम रिजेक्ट करते हैं। आपको तो खुद ही पता है कि ये जो कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एड पैलेस्टाइन के अंदर गाजा में जा रही थी वो इसराइल, यूएस, इजिप्ट, यूनाइटेड नेशंस और जितनी भी और डिफरेंट पार्टीज थी उनकी मर्जी से जा रही थी, हम सिर्फ उसको फैसिलिटेट कर रहे थे और हम ये करते रहेंगे, हम पैलेस्टीनियंस को ह्यूमैनिटेरियन एड देते रहेंगे। इस एड को जो कि ह्यूमैनिटेरियन एड है जो कि दुनिया सारी के सामने जाती है इसको इसराइल ने हमास की फंडिंग से जो है जोड़ा है, जो कि बिल्कुल गलत है। और हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इस वॉर के अंदर कमी आए, और हमको ऐसे एक्यूज करना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कतर ने जनाब आज बड़ा रिएक्शन इस पे शो किया है। और पायन देखो फिर दोस्त ऐसे होने चाहिए, हमारे तो दोस्त भी ऐसे नहीं है। आज जनाब जो नॉर्थ कोरियन लीडर हैं किम जोंग उन, उनको पुतिन साहब ने एक बड़ी गड्डी जो है बड़ी एक्सपेंसिव लिमोजिन गिफ्ट की है, है जी। अच्छा जी, अब ये गाड़ी वैसे तो सोचा जा रहा है कि ये जो इनके अपने पास है पुतिन साहब के पास ऑरस सेनेट लिमोजिन, शायद उन्होंने वो दी है, क्योंकि उसका बड़ा जब ये विजिट पे आए थे रशिया की सेप्टेम्बर में किम साहब, तो उन्होंने बड़ी तारीफ की थी और पुतिन साहब ने कहा था जी आओ मैं तुम्हें राइड लिख के देता हूं। तो हो सकता है ये यही गाड़ी हो, लेकिन जो इनको गिफ्ट दिया है वो अभी तक रिवील नहीं हो सकी कि वो कौन सी कार है, उसका मेक क्या है, मॉडल क्या है। बारा जी ये गाड़ी जो है उनकी बहन जो है किम यो जोंग, उनकी मौजूदगी में रशियन ऑफिशियल्स ने उनको दी है। किम जोंग उन ने पुतिन साहब का बड़ा थैंक यू बोला है उनको, और उन्होंने कहा है कि ये गिफ्ट जो है शो करता है कि हमारे दोनों के बीच में बड़े क्लियर जो है बड़े स्पेशल जो है पर्सनल रिलेशंस हैं। और किम साहब जो है उनको बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है वो जमा करने का बड़ा शौक है, उनकी ह्यूज एक कलेक्शन है लग्जरी कार्स की, जिसमें कि मर्सिडीज मेबख S600 है, रोल्स रॉयस फैंटम है, लेक्सस LX570 है। मतलब एक इतने गरीब मुल्क दे विच इतनिया एक्सपेंसिव गड़ियां हैं पायन, व्हाट इज दिस। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये जनाब आज बड़े प्यार मोहब्बत की जो पिंगे हैं ये बड़ी हैं। एंड जनाब दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय टैप टैप सेंड, 30 बैंक्स जो है पाकिस्तान के, उसमें आप बहुत इजीली पैसे भेज सकते हैं अगर आप भेजना चाहते हैं, है जी। आप इनकी ऐप जो है बहुत ही कन्वीनियंटली और सिक्योर तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉयड और एप्पल पे बड़ा इजीली ये डाउन हो जाता है, और आपको बेस्ट रेट्स मिलेंगे, बड़े फास्ट तरीके से आपके पैसे उधर पहुंचेंगे पाकिस्तान विद इन मिनट्स। तो tap-tap-send.com को विजिट करें और होर इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा जनाब राजा बादशाह जी, दिल दे राजा थे बादशाह, ऑल स्टेट में होते हैं, अगर आपको राइट कवरेज चाहिए तो आप इनको कॉल करें बल्कि, है जी। और राजा बादशाह जी जो है वो आपको बड़ी अच्छी वो कहते हैं जी कि मैं रेट्स आपको लेके दूं, गुड रेट्स, अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर गुड रेट्स आप मुझे कॉल करें। इनका नंबर है 6472903773, इनका नंबर है। अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत दिनों से, कोई तकरीबन कह रहे हैं 72 आवर्स से, एक्स जो है जिसको पहले ट्विटर कहते थे वो बंद था। अभी थोड़ी देर पहले जो है इतला आई है कि शायद उसको खोल दिया गया है, कुछ लोग शायद उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन साढ़े लोग भी बड़े जुगाड़ू है ना। अब उन्होंने एक्स बंद कर दिया तो वो जो वीपीएन होता है ना उसके थ्रू मैसेजेस एक दूसरे को भेज रहे थे। बड़ा जी एक्स अब लगता है खुल गया, लेकिन जब एक्स ये बंद था अभी थोड़ी देर पहले भी, तो केयरटेकर गवर्नमेंट जो थी उससे मीडिया ने एक्सप्लेनेशन मांगी, तो केयरटेकर गवर्नमेंट ने कहा जी इनके हमें जो है इसके बारे में कुछ नहीं पता है, हालांकि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये गारंटी करता है कि ये इंटरनेट जो है इसको आपने शट डाउन नहीं करना, क्योंकि दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। इन फरवरी 2018 जो रूलिंग एक आई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि लोगों का ये फंडामेंटल राइट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरनेट को बंद ना किया जाए। बहरहाल जी आज जब मीडिया ने इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर मुर्तजा सोलंगी साहब से पूछा तो उन्होंने कहा जी मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, ये मिनिस्टर ऑफ आईटी जो है या कि चेयरमैन पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है उनसे बात करें, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है। आज पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है उन्होंने भी ये जो एक्स को बंद किया गया था इस एक्ट को बहुत ज्यादा डिनाउंस किया। बहरहाल जी मुर्तजा सोलंकी साहब तो आजकल बिल्कुल ही सेवंथ हेवन पे हैं, कल भी उन्होंने एक बीबीसी के लड़के के साथ लड़ाई की। बीबीसी का वो जो लड़का था बेचारा जो जर्नलिस्ट था वो ये कह रहा था कि मिनिस्टर साहब आपने मुझे टाइम दिया है और आप मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि तुम लोग सही तरह से रिपोर्टिंग नहीं करते हो। तो उन्होंने कहा जी आपने मिनिस्टर साहब मुझे इंटरव्यू का आपने मुझे टाइम दिया है, आपने मुझे कहा वेंसडे 6 PM मेरे से आके मिलो, तो अब मैं आपसे मिलना चाह रहा हूं तो आप मेरे से नहीं मिलना चाह रहे हैं, तो उसने कहा मैं तुमसे नहीं बात करना चाहता। तो काफी लड़ाई झगड़ा वहां पे हुआ, तो वो बीबीसी का बेचारा लड़का हुआ। तो मुर्तजा सोलंकी साहब तो पता नहीं आजकल किन ख्यालों में कि मैंने सारी जिंदगी बाकी की जितनी मेरी बच गई है मैंने मिनिस्टर ही रहना है एंड आई कैन एक्चुअली यू नो एक्ट लाइक दिस, पता नहीं क्यों। बहरहाल ये जो है वो, और उन्होंने बड़े क्वेश्चन भी और उन लड़कों ने करने की कोशिश की इंटरनेशनल प्रेस ने, उन्होंने कहा ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन और ये जो जर्नलिस्टों के खिलाफ हो रहा है ये आपको ठीक लग रहा है, उन्होंने कहा मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। अच्छा जी, इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान, उन्होंने कहा जी कि जेल से इमरान खान साहब का एक मैसेज आया है और उन्होंने कहा जी कि ये जो फरवरी 8 के जो ये इलेक्शंस थे, मदर ऑफ ऑल रिगिंग जो थी इसके अंदर हुई है। उनकी मुलाकातें जो है इमरान खान साहब से अडियाला जेल में हुई थी, जिसमें कि लोगों ने, आपको पता ही है कि ये जो इलेक्शन हुए थे फरवरी 8 के, उसमें मैसिवली पीटीआई को वोट्स दिए थे। तो आज इमरान खान से मुलाकात के बाद जब अलीमा खान बाहर आई तो मीडिया मौजूद था, उनसे बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने कहा है कि ये पीटीआई का मैंडेट जो है, जो लोगों ने बड़ा ओवरवेलमिंगली पीटीआई को दिया था, वो चोरी किया है और उन्होंने बड़ा कंडेम किया है इस सारी चीज को। इसके अलावा जो इंटरनेट सर्विसेज को जो सस्पेंड किया है उसको भी उन्होंने कंडेम किया, क्योंकि वो कहते हैं जी रियल रिजल्ट जो है वो ये लोग शो नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब ने अलीमा खान के मुताबिक बड़ा कंसर्न शो किया है कि जो फॉर्मर रावलपिंडी के कमिश्नर हैं उनकी फैमिली और उनके साथ क्या होने वाला है उसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। इसके अलावा पीटीआई के लॉयर शोएब शाहीन जो हैं, उन्होंने भी कहा है जी कि ये सारे का सारा जो हमारी सीटें हैं पीटीआई की, जो लोगों ने हमको पीटीआई को वोट्स दिए थे और बड़े नंबर्स में बाहर आए थे, वो सारी हमसे स्टील की हैं और लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने किसके लिए वोट किया था। सिर्फ नेशनल ही बल्कि इंटरनेशनल मीडिया को भी पता है कि किस लेवल की पोल रिगिंग यहां पे, पोस्ट पोल रिगिंग जो है यहां पे हुई है। तो ये आप एक्सट्रैक्स बंद कर देंगे तो उसको बंद करने से कुछ फायदा नहीं है। जैसे कि इमरान खान साहब ने जो है, जैसे कि अलीमा खान ने भी कहा था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर राजा साहब, उनके बारे में भी कहा कि उन्होंने बिल्कुल गलत तरीके से ये इलेक्शंस चलाए हैं और बड़े उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे रिगिंग के। उसी सिलसिले में पीटीआई के बैरिस्टर गौहर अली खान जो है आज वो मीडिया के साथ बात कर रहे थे। उनकी मुलाकातें जो थी आज हुई थी इमरान खान साहब के साथ अडियाला जेल में। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने हमको डायरेक्टिव दिया है और हम डिमांड करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा साहब जो है वो बिल्कुल रिजाइन कर दें इमीडिएटली। ना सिर्फ पीटीआई बल्कि और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कह रही हैं कि मैसिव स्केल पे रिगिंग जो फरवरी 8 के इलेक्शंस में हुई है उसमें इलेक्शन कमिश्नर साहब को जो है वो देनी चाहिए अपना रेजिग्नेशन। पीटीआई के जो गौहर साहब हैं उन्होंने ये भी कहा कि रिजल्ट्स जो हैं वो फॉर्म 45 के बेसिस पे आने चाहिए और फॉर्म 47 के बेस पे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसमें मेजर डिस्क्रिपेंसीज जो हैं वो हैं। गौहर साहब ने कहा कि ईसीपी फेल टू फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ईसीपी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमिश्नर भी सिकंदर राजा भी। पीटीआई ने यह कहा कि जी इनको चाहिए था, हमने बड़ी दफा इनको कहा था कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आप इलेक्शंस करवाएं, लेकिन अब चूंकि आपने नहीं कराए हैं तो इसलिए हम डिमांड करते हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर बिठाई जाए। इसके अलावा बैरिस्टर गौर साहब ने यह भी कहा कि जो फॉर्मर रावलपिंडी कमिश्नर लियाकत अली चट्टा है, हम बड़े उनके लिए फिक्रमंद हैं क्योंकि उनके जो एलिगेशन हैं, उन्होंने जो सारी बातें सामने लाई हैं, तो अब उन पर और उनकी फैमिली की जो सेफ्टी है उसको कैसे इंश्योर किया जा सकता है, उसके लिए हम परेशान हैं। आज सेनेट के अंदर भी जमात इस्लामी के जो सेनेटर है मुश्ताक अहमद साहब, उन्होंने भी कहा है कि सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरन रिजाइन कर देना चाहिए फॉर द मैस रिगिंग, अलेज्ड मैस रिगिंग इन जो है फरवरी 8 इलेक्शंस। और जनाब जिथे भी खोती उतरे अंक लोथी, जो हम पहले दिन से कह रहे थे पीडीएम टू आएगा, लोग कहते थे ओ नहीं नहीं ऐसे कैसे है ये है वो है। बहरहाल जी, बड़ा तू तू मैं होने के बाद आफ्टर मच यू एंड क्राई, जैसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं, या मच अडो अबाउट नथिंग, इट वॉज एक्चुअली मच अडो अबाउट नथिंग है जी, तो पीपीपी और पीएमएलएन जो है वो फिर उन्होंने हाथ जोड़ लिए हैं और अब जी वो बनाएंगे। अच्छा, इससे पहले जो है बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई, ये जो है बीबी जरदारी साहब जो हैं आज अपने नाना जी का, जो जुल्फकार अली भुट्टो का जो रेफरेंस डाला गया था, उनकी जो जुडिशियल किलिंग की गई थी उस सिलसिले में आज अदालत में थे और उसके जब हियरिंग सुन के बाहर आए तो वो मीडिया से बात कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि हम पीएमएलएन को अगर वो गवर्नमेंट बनाएंगे तो उनको तो सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन उसके अंदर टर्म्स हमारी भी होंगी, तो हम उनके साथ अपनी टर्म्स पे करेंगे। और उन्होंने कहा जी कि ये वैसे तो अभी जो इलेक्शन आए हैं उसमें बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि लोगों ने किसी एक पार्टी जो है उसको मेजोरिटी नहीं दी है, तो इसलिए एक कंसेंसस हमको डेवलप करना पड़ेगा, इकट्ठे मिलकर बैठना पड़ेगा और ये डिसाइड करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जो है वो कौन बनाएगी। ये 6 राउंड ऑफ टॉक्स जो थे ये इनके बीच में चल रहे थे कि जो गवर्नमेंट बनाई जाए, और इसके अंदर जो है वैसे ये देखा गया था जब इलेक्शन खत्म हुए थे तो जो नतीजे आए भी थे, पीटीआई बैक्ड जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट विनिंग ग्रुप था, जिसमें कि 90 नेशनल असेंबली की सीट्स उन्होंने जीती थी, फॉलोड बाय पीएमएलएन की 79 एंड पीपीपी की 54। इसीलिए पीएमएलएन पीपीपी को कह रहा था कि आप हमारे साथ हाथ जोड़ें ताकि हम जो है सेंटर पे बनाएं। ये 336 मेंबर का जो है ये नेशनल असेंबली का जो है पार्लियामेंट की में सीट्स हैं, तो इसमें डेडलॉक चल रहा था बहुत देर से। बीबी जरदारी का कहना था जी कि ये जो डेडलॉक अगर ऐसे चलेगा तो ये किसी को फायदा नहीं देगा, ये डेमोक्रेसी और इकोनॉमी के लिए खराब है, और हम जो है चाहते हैं कि इन चीजों को अब भूला जाए, इन चीजों को ड्रैग ना किया जाए, और पीएमएलएन को हम सपोर्ट करने को तैयार हैं और इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। उसमें मतीउल्लाह जान साहब जो है उन्होंने क्वेश्चन कर लिया, उन्होंने कहा कि आपके तालुकात जो है कोई एस्टैब्लिशमेंट के साथ तो नहीं है। बीबी जरदारी उस पर बड़ा भड़क गए, उन्होंने कहा आपके पास कोई सबूत है? आप जैसा जर्नलिस्ट बगैर एविडेंस के कैसे बात कर रहा है? आपने मुझे कैसे एक्यूज किया है कि मेरा ताल्लुक जो है एस्टैब्लिशमेंट के साथ है? मैं सोच नहीं सकता था कि आप जैसा जर्नलिस्ट जो है ऐसा एक्यूजेशन करेगा विदाउट एनी एविडेंस। आपको पहले एविडेंस लाना चाहिए और फिर बोलना चाहिए मेरा कोई टच, मैं नहीं हूं इन टच में एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो इस तरह की बात आप जो है मत किया करें। बहरहाल जी, अब जो इनकी आपस में गठजोड़ फिर से हो गया जो पीडीएम टू अब ये चलाएंगे, उसमें शहबाज शरीफ साहब जो है प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और आसिफ अली जरदारी साहब जो है प्रेसिडेंट रहेंगे। जैसा कि कल भी बीबी जरदारी ने कहा था कि अगर हमारा ऐसे गठजोड़ होगा तो उसमें बीबी जरदारी के जो वालिद साहब हैं आसिफ अली जरदारी वो प्रेसिडेंट रहेंगे। ते जनाब उत आ गए भाया, फिर ऐसे ही लंबे इतने इलेक्शन कराए हैं, उन्होंने उत्ते इतना पैसा खर्च किया, कौम को भी सताया, पहले ही क्या देते। और जनाब सुप्रीम कोर्ट जो है उसने आज हिंट किया है कि ये जो रेफरेंस लेकर आया गया है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इन द डेथ ऑफ जुल्फकार अली भुट्टोज, जो जुल्फकार अली भुट्टो इन 1979, उसका फैसला शायद जल्दी किया जा सकता है। आज एक लार्जर बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा, उसमें थे जस्टिसेज सरदार तारिक, सैयद मंसूर, याया अफरीदी, अमीनुद्दीन खान, जमाल मंदोखेल, मोहम्मद अली मजहर, सैयद हसन रिजवी, मुसर्रत हिलाली। इन्होंने कहा जी कि हम रीविजिट कर रहे हैं जो कंट्रोवर्शियल डेथ सेंटेंस दी गई थी भुट्टो साहब को। बीबी जरदारी जो थे यहां पे मौजूद थे हियरिंग के ऊपर, जस्टिस ईसा ने इसके ऊपर कहा जी कि तमाम के तमाम रिस्पॉन्डेंट्स जो है इस केस में वो सामने आए, और सुप्रीम कोर्ट जो है फौरन से फौरन इस हियरिंग को एंड करना चाहती है इससे पहले कि मैं रिटायर हूं, जिसका के मतलब है कि ये जल्दी जो है फैसला इसका लाना चाहते हैं। वो कहते हैं जी मुझे बड़ी हैरत है कि सुप्रीम कोर्ट को ये जो दिया जा रहा है और जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को एक मौका दिया जा रहा है कि अपनी पास्ट मिस्टेक्स जो है उनको करेक्ट कर सके, तो क्या वो इसका फायदा उठाएंगे या नहीं उठाएंगे और अपनी रेप्यूटेशन को रिस्टोर करेंगे या नहीं, तो अब देखेंगे जी करेंगे कि नहीं। हिंदुस्तान के अंदर भी जनाब बड़ी गर्मी चल रही है, क्योंकि आपको पता है वहां भी इलेक्शन आने वाली हैं जी। आज बड़ा मेजर ब्लो मिला है बीजेपी को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक हियरिंग सुन रही थी, अगेन ये बड़ा कंट्रोवर्शियल, चंडीगढ़ के अंदर म्यूरल इलेक्शन हुआ था जिसमें कि फिर उसको चैलेंज कर दिया था और इसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए थे हिंदुस्तान की, जिसमें कि आम आदमी पार्टी के जो है कुलदीप कुमार उन्होंने कहा था जी कि ये खाम खा जो है ये इसको जो बीजेपी के अफसर को जताया है, और वहां पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था अनिल मसीह उसने ये सारे चेंजेस किए हैं। बहरहाल जी आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को जो है अब चंडीगढ़ का मेयर इलेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्राचूर, और उन्होंने कहा जी कि मैं देख सकता हूं सारे एविडेंसेस जो मेरे सामने आए हैं कि जो पोल प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये था मसीह, इसने डिलिबरेटली 8 बैलेट्स जो है उनको डिफेस करने की कोशिश की थी इन फेवर ऑफ कुमार, ताकि इसको जो है किया जा सॉरी अगेंस्ट कुमार, ताकि ये जो है बीजेपी के मनोज सोनकर को विनर करार दिया जा सके। दूसरा जो झटका आज बीजेपी को लगा है वो राहुल गांधी जी के सिलसिले में लगा है कि उनको बेल दे दी गई है सुल्तानपुर कोर्ट ने इन 2018 डेफेमेशन केस, जिसको के फाइल किया था बीजेपी के लीडर विजय मिश्रा ने। उन्होंने कहा था जी कि इनके जो कमेंट्स हैं अगेंस्ट होम मिनिस्टर अमित शाह बिल्कुल ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी के बारे में कि मुझे लगता है कि बीजेपी वाले ये जो सारा क्लेम करते रहते हैं कि जी हम बड़े ऑनेस्ट हैं और क्लीन पॉलिटिक्स करते हैं, उनका खुद का अपना पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह जो है उसके ऊपर तो मर्डर केसेस हैं, तो ये कैसे जो है नीट क्लीन पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो उसके ऊपर फिर राहुल गांधी के ऊपर जो केस डाला गया था उससे आज इनको बेल मिली है। सो बैक टू बैक दो चैटके मिले हैं आज। ठीक है जी, आज वेस्ट बंगाल के अंदर काफी एक गंदा सीन क्रिएट हुआ, उसकी वजह यह है कि सिख आईपीएस लीडर ऑफिसर जो है जसप्रीत सिंह, जिनको के डिप्यूट किया गया है टू प्रिवेंट सीनियर वेस्ट बंगाल बीजेपी लीडर सुविंदु अखी खारी फ्रॉम विजिटिंग रिस्पेक्टिव संदेश काली इन नॉर्थ 24 परगसनास डिस्ट्रिक्ट में, तो उसके ऊपर जो है ये बीजेपी के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इसको खालिस्तानी कहा, क्योंकि उसको तो बेचारे को ऑर्डर मिले हैं कि वो बीजेपी का लीडर वहां पे जा नहीं सकता है सुवेंदा की कारी, तो उन्होंने कहा जी कि ये इसलिए नहीं उसको जाने दे रहा है क्योंकि ये खालिस्तानी है। बीजेपी के जो एमएलए हैं अग्नि मित्रा पॉल, वो आज अधिकारी के साथ थे और उन्होंने कहा जी कि ये आदमी जो है खालिस्तानी है और ये काम जो है ठीक से नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर जाहिर है कि जसप्रीत सिंह जो है वो बड़ा भड़क गए, उन्होंने कहा जी जस्ट बिकॉज आई वेयर अ टर्बन इट डजंट मीन दैट आई एम अ खालिस्तानी। कोई भी पुलिस ऑफिसर जो टर्बन बनता है वो अपनी ड्यूटी ऑनेस्टी से करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खालिस्तानी बन जाता है। शेम ऑन ऑल ऑफ यू जो कि हम जैसे अफसरों के ऊपर ऐसी बात करते हैं, हम सिर्फ अपनी जॉब कर रहे हैं और हम जब आपके रिलीजन के बारे में बात नहीं करते हैं तो आप हमारे रिलीजन पर क्यों बात करते हैं। अब चूंकि ये वेस्ट बंगाल में थे तो हमारी दीदी जो है चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी वो भी बड़ी भड़क गई, उन्होंने कहा बीजेपी का तो काम ही है कि वो डिविसिव पॉलिसीज करती है और बड़ी शेमलेसली ओवरस्टेप करती है कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को, उसको कोई शर्म नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के काम करने की जरूरत है। और उन्होंने बड़ा कंडेम किया कि जो सिख बड़ी मेहनत से काम करते हैं कि रेप्यूटेशन को अंडरमाइन आपने करने की कोशिश की है, लेकिन जो सिखों का कंसर्न है अभी तक उनके है, ना सिर्फ उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं बल्कि वर्बल बल्कि अदरवाइज भी। अभी कुछ दिन पहले जो हैं इंद्रजीत सिंह गोसाल ब्रैम्पटन के अंदर जो यहां पे हमारे कनाडा में थे उनके ऊपर जो है अभी अटैक हुआ था गन फायर से, और उनकी जो दीवार है उसके अंदर जो है गन बुलेट के जो होल्स हैं वो देखे गए थे। पील रीजनल पुलिस ने कहा था कि हमने एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई है, और इसके अलावा यूके के अंदर सिख भी जो है वो भी कह रहे हैं कि जो वेस्ट मिडलैंड के एरिया में रह रहे हैं उनको बहुत सारे लाइफ थ्रेट्स मिल रहे हैं। तो काफी जो है इसके ऊपर आप सिख बात कर रहे हैं कि भाई हमारी सुरक्षा का इंतजाम करो, है ना जी। और आपको पता ही है कि कनाडा में और यूएस में तो क्या हुआ है, वो तो नो नीड टू रिपीट। और जनाब जॉन सीना साहब आपको पता ही है, आपने उसकी अगर फाइट्स देखी हैं वो क्या कहता है, यू कांट सी मी, है जी। तो वो जो है वो शाहरुख खान का बड़ा ही फैन है और उसने हमेशा बड़ी जो है वो करता है इसकी तस्वीरें वगैरह शाहरुख खान साहब की लगाता रहता है, और अब उन्होंने जी एक बड़ा जबरदस्त वो जो उसका सिग्नेचर पोज है जो हाथ खोल के वो खड़े होते हैं शाहरुख खान साहब, वो फिर से एक जो है पिक्चर उन्होंने शेयर की है अपने सोशल मीडिया के ऊपर। अभी रिसेंटली भी उनका एक वीडियो आया था जिसमें वो शाहरुख खान का जो गाना है भोली सी सूरत फ्रॉम उनकी जो मूवी है 1997 की दिल तो पागल है उसमें वो गाते हुए नजर आए हैं, और 2017 में उन्होंने जो एक शाहरुख खान के ऊपर आर्टिकल आया था उसको भी एक्स के ऊपर जो है वो शेयर किया था। शाहरुख खान साहब ने उस वक्त उनका बहुत शुक्रिया अदा किया था, उन्होंने कहा था आई कांट सी यू आई विश टू सी यू समडे ऑल द लव, क्योंकि जाहिर है वो हमेशा कहते हैं ना यू कांट सी मी। तो जब वो लड़ता है फाइट करता है, अगर आपने देखी होगी जॉन सीना की फाइट तो जब वो आदमी गिर जाता है तो वो हमेशा ऐसे हाथ को ऐसे ऐसे करके कहता है यू कांट सी मी ऐसे ऐसे तो उसी टोन में शाहरुख खान साहब कह रहे थे। और जनाब खबर आई है कि शाहरुख खान साहब अब पठान 2 में भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि एक स्क्रिप्ट है जो ये और आदित्य चोपड़ा ऑफ यश राज स्टूडियोज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसकी प्रोडक्शन जो है ईयर एंड पे शुरू हो जाएगी, यानी कि 2024 के एंड पे शुरू होगी। ये 8th फिल्म होगी यश राज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स में, इससे पहले वो बना चुके हैं एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर पठान, टाइगर 3, वॉर 2, टाइगर वर्सेस पठान, और अब पठान 2। पठान 2 के अंदर वो कहते हैं जी बहुत ही एक्साइटिंग रहने वाली है, इसलिए कि इसमें जो बॉलीवुड बिग स्क्रीन के जो दो सबसे बड़े जो लेजेंड्स हैं वो नजर आएंगे, यानी कि शाहरुख खान और सलमान खान एक दूसरे के अगेंस्ट, तो लोग जो हैं वो बड़े एक्साइटेड हो गए हैं जी। और जनाब दीपिका पाडुकोन और रणवीर सिंह के घर में पहला बच्चा आ सकता है, ये आई हैं खबरें। सूत्रों के अनुसार दीपिका जो हैं वो अपने सेकंड ट्राइमेस्टर में हैं, और अभी जब 77th बैफ्टा रेड कार्पेट पे वो एक साड़ी पहने हुए आई थी तो अपनी मिडरिफ जो हैं वो छुपा रही थी, बड़े जबरदस्त उन्होंने साड़ी शिमरी सी पहनी हुई थी गोल्ड की, और सब्यसाची मुखर्जी की ज्वेलरी उन्होंने पहनी थी उसके साथ में। और अब खबरें आ रही हैं कि उनका जी पहला बच्चा आने वाला है। इन दोनों की शादी नवम्बर 14, 2018 में हुई थी इटली के लेक कोमो में, तो ये अब है। और जनाब विराट कोहली एम्स जो अनुष्का शर्मा है उन्होंने अपने दूसरे बच्चे को आज की खबर दी है कि वो पैदा हुआ है। कोहली ने अपना जो ये न्यूज है इंस्टा के ऊपर शेयर किया है, उन्होंने कहा जी कि फरवरी 15 को हमारे घर अब बेटा हुआ है आके, वामिका का छोटा भाई, वामिका इनकी बेटी है, वो उसका छोटा भाई इस दुनिया में आया है, हम आपकी ब्लेसिंग्स और गुड विशेस चाहते हैं। तो जाहिर है लोगों ने इनको एक्स के ऊपर बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेट किया। एंड जनाब, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में शुरू होने वाली है 3-मैच सीरीज। न्यूजीलैंड के जो कैप्टन है मिशेल स्टेटनर, उनसे कहा गया कि जी फेवरेट तो जो है वो ऑस्ट्रेलिया है और आप तो अंडर डॉग्स हैं, तो उन्होंने इस चीज को जो है ब्रश किया, उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया जो है ओडीआई चैंपियन है और जो है ये वो कहते हैं जी कि कल से अब हमारे जो मुकाबले शुरू होंगे तो हम पूरी फोर्स से मैदान में उतरेंगे। 2021 के चैंपियंस हैं ऑस्ट्रेलिया और ये भी अपने पूरे फुल स्क्वाड के साथ आएंगे, जिसके के अंदर मैथ्यू वेड, ग्लेन मैक्सवेल, एडम जेम्पा, डेविड वार्नर जो है वो सब नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया जो है वो बड़ी स्ट्रेंथ के लेवल पे से इनके साथ आ रहा है खेलने के लिए, क्योंकि होम सीरीज में 3-0 से T20 उन्होंने जो सीरीज थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वो वेस्ट इंडीज को हराई थी और हालांकि फिर उन्होंने इंडिया से 1-4 पे लूज किया था अपनी एक सीरीज अवे फ्रॉम होम आफ्टर वर्ल्ड कप इन नवंबर एंड दिसंबर, लेकिन फिर भी वेस्ट इंडीज से जीते और उसके बाद फिर न्यूजीलैंड जो है वो भी कह रहा है कि हमको हल्के में नहीं लेना भाई, क्योंकि हमने भी 4-1 से पाकिस्तान को हराया है। तो ये जनाब बड़े जबरदस्त मैकेवले होने वाले हैं।
अच्छा मुकाबला होगा,
बहुत अच्छा मुकाबला,
वेरी इंटरेस्टिंग।
जी जी बिल्कुल। और जनाब पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने अब ट्रांसफर कर दिया है पीसीबी को कि इसके तमाम के तमाम अफेयर्स जो है कैबिनेट डिवीजन देखेगी। एक नोटिफिकेशन जो थी उसमें कहा गया है कि पीसीबी किसी को भी आंसरेबल नहीं है और वो डायरेक्टली पीएमओ के अंडर रहेगा और एज ऑटोनोमस बॉडी काम करता रहेगा, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने वो फंड्स जनरेट करता है, तो इसलिए वो किसी को जवाबदेह भी नहीं है। गवर्नमेंट ने पहले जो थी डिसॉल्व कर दी थी जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और इसको लेकर आ गए थे मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के नीचे, लेकिन जिसके ऊपर पीसीबी ने बहुत शोर मचाया था और कहा था कि हमको एज ऑटोनोमस बॉडी काम करने दिया जाए, लेकिन ये इसलिए इनको किया गया था ताकि ये फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर सके। आज अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा कि नहीं, ये खुद ही अपने फैसले बनाएंगे, सिर्फ कैबिनेट डिवीजन जो है इनके अफेयर्स जो है वो देख सकती है, या ये अगर जवाब देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट जान हतन अलसेफ, 22 ईयर्स की हैं, शी इज द फर्स्ट फीमेल फाइटर फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू साइन मेजर ग्लोबल एमएमए प्रमोशन, जो ये जो है लीग प्रोफेशनल फाइटर्स लीग, इसको इन्होंने ज्वाइन किया है और इन्होंने 2023 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मुए थाई एसोसिएशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था। शी इज वेरी वेरी यू नो गुड एमएमए प्लेयर और इनको जो था ब्रेक थ्रू फीमेल एथलीट का अवार्ड मिला था। इसके बाद इन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली थी एट वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स एंड सऊदी गेम्स के अंदर भी, लेकिन वो कहती हैं कि मेरा पास जो है वो बहुत डिफिकल्ट रहा है, मेरे पेरेंट्स में जब मैं पैदा ही हुई हूं तो डिवोर्स हो गई थी, उसके बाद मैं अपने ग्रैंड मां के घर रहती थी, 10 साल की उम्र में मेरे दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और मैं बड़ी डिप्रेस थी और मैं सुसाइड करना चाहती थी। जब लोगों ने मुझे कहा कि तुम बड़ी, तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ है, यू शुड ज्वाइन समथिंग लाइक एमएमए, तो मैंने जब से किया तो दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग दैट हैज हैपन टू मी। इन्होंने कहा कि आने वाले जितने भी मुकाबले हैं उसमें आई विल रिप्रेजेंट माई कंट्री, माई फैमिली एंड एवरी सऊदी फीमेल। आई वॉन्ट टू टेल यू स्काई इज द लिमिट,
स्काई इज द लिमिट, यस।
ठीक है जी,
ठीक हो गया जी।
सो द फर्स्ट सऊदी वुमन टू गेट ऑल दीज अवार्ड्स एट एमएमए,
ठीक हो गया।
पायन खुश हो तुसी हो,
बस
मतलब और तुसी अजे सुनना है?
हां जी,
और कहानियां सुननी है?
अभी तो तैयार हो रहे हैं, हम तो गर्म कॉफी लेके आए हैं।
बस अपनी गर्म कॉफी को ठंडा कर ले, काफी गर्मा गर्म करवाए हमने दे दिए आपको।
थैंक यू सो मच शरद जी, एंड बकिया की खबरें इंशाल्लाह ताला कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अब से लेके कल तक की जितनी भी अहम खबरें होंगी और छोटी मोटी और बड़ी, सब सारी खबरों से हम आपको आगाह करेंगे। एंड इस वक्त मैं डी चलता हूं आपको कहां पर, प्रोग्राम इन प्रोग्रेस विद जीशान। चलिए साहब, आज बाय द वे मगरिब की अजान होगी 5:55 पे, 5:55 पे मगरिब की अजान होगी। शादी जी थैंक यू,
थैंक यू मच, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह,
आई विल सी यू टुमारो, बाकी की बातें कल इंशाल्लाह ताला, अल्लाह हाफिज।
जाने करीमी का सदका दिला दे इलाही, रहीमी का सदका, न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे। جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الٰہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا سرور رکھنا، بلا سے ہم کو صدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشان پناہ مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الٰہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الٰہی تجھے واسطہ پنج دن کا، ہوشا چمن کا، الٰہی تجھے واسطہ پنج دن کا، ہوشاداب غنچہ دلوں کے چمن کا، یہ دامن ہمارا مرادوں سے بھر دے، یہ دامن ہمارا مرادوں سے بھر دے، میں سب کے لیے یہ دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الٰہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں۔
WTOR Youngstown, Toronto now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kilohertz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM। हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288। इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाइना के नंबर्स आप eawar.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशे आपके लिए, विजिट कीजिए eawar.com। लाइक करें फेसबुक पेज eawar, डाउनलोड करें फ्री eawar ऑफिशियल ऐप। रेडियो 770 AM, वॉइस ऑफ कम्युनिटी। फॉर मोर डिटेल्स विजिट eawar.com।
Thank you. चोरी चोरी चुपकी से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी दुनिया बसा जा। चोरी चोरी चुपकी से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी दुनिया बसा जा। चोरी चोरी चुपकी से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी दुनिया बसा जा। आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सोनी सोनी दुनिया बसा जा। चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सोनी दुनिया बसा जा।
से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सोनी सोनी दुनिया बसा जा, चोरी चोरी बातों को फिर से आके आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सोनी सोनी दुनिया बसा जा।
मुझे प्यार होने लगा है,
दिल दीवाना।